When we try memorizing words, something always comes to my mind.
और जब हम इस वचनों को याद करने की कोशिश करते हैं, मेरे मन में कुछ आता है.
Once a brother told,
एक भाई ने एक बार बताया,
it is very hard to memorize even a single words.
बहुत ही कठिन हो जाता है एक वचन याद करना.
And he was, but it very easy to remember some wrong thing which someone has done, say some 20-30 years.
लेकिन ये याद करना बहुत आसान होता है 20-30 साल पहले किसी ने अगर हमें कुछ गलत कहा हो.
So that is very true. It's,
बहुत सच है ये.
Our memories be unnecessarily we store unnecessary things which should long back we should delete and remove.
और बहुत ही जो जरूरी बात नहीं उन चीजों को हमारी यादों में हम रखते हैं जिसको हमको दूर करना चाहिए.
And let us strive to refresh our memory, fill our mind with good things.
हमारी यादों को ताज़ा करें, हमारे मन को अच्छी और भली बातों से हम भरें.
Psalm 133.
भजन संहिता 133.
We read a beautiful representation of the excellence of brotherly unity.
और यहाँ पे लिखा है कि भाईचारे का जो प्रेम है, जो संगति, उसकी उत्तमता के बारे में यहाँ लिखा गया है.
Psalm 133,
भजन संहिता 133 अध्याय.
Very quickly, I'll read that. Behold, how good and how pleasant it is for brothers to dwell together in unity. It is like the precious oil upon the head coming down upon the beard, even Aaron's beard, coming down upon the edges of his robes. It is like the dew of Hermon coming down upon the mountains of Zion, for there the Lord commanded the blessing, life forevermore.
और देखो क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहे. यह तो उस उत्तम तेल के समान है जो हारून के सिर पर डाला गया था और उसकी दाढ़ी पर बहकर उसके वस्त्र की छोर तक पहुंच गया. यह हेरमोन की उस ओस के समान है जो सियोन के पहाड़ों पर गिरती है. यहोवा ने तो वही सदा के जीवन की आशीष ठहराई है.
So it's such a beautiful thing when brothers dwell together in unity.
और ये क्या ही मनोहर और बहुत अच्छी बात है कि सारे भाई लोग एक साथ संगति में मिलकर बने रहे.
But it is not easy.
लेकिन ये आसान नहीं है.
Bible says that be diligent to preserve the unity of the spirit in the bond of peace.
और Ephesians 4:13 में लिखा है कि हमें यत्न करना है ताकि आत्मा के अंदर उस एकता को हम उस शांति के द्वारा बनाए रखें.
So there is an effort required, a diligence required to ensure the unity of the spirit in the bond of peace.
और ये ऐसे नहीं होता, लेकिन इसके लिए यत्न की जरूरत है ताकि हम इस संगति को बनाए रख सकें.
So in that Psalm we read in the verse 3 we read it is there the Lord commanded the blessing.
और तीसरे वचन में देखते कि यहोवा ने तो यही सदा के जीवन की आशीष ठहराई है.
So in an environment of brotherly unity, that is where the Lord command his blessing.
और जो भाइयों की एकता संगति बनी रहती है वहां परमेश्वर ने आशीष की आज्ञा दी है.
So it is very important for us to seek and strive to ensure unity in our midst.
और हमारे बीच में हमें हर एक यत्न को करना है, हर एक उस चीजों को, ताकि हम इस भाईचारे की इस संगति को बनाए रखें.
In relation to fellowship with one another and even in the church.
और एक दूसरे के साथ और कलीसिया के अंदर भी संगति बनाए रखने में.
I like an expression about some old English song. It says something like this: Church is home for the faithful few.
और एक अभिव्यक्ति इस प्रकार मुझे इस गीत में इस प्रकार कहा गया है कि कलीसिया जो है जो कुछ गिने चुने विश्वासियों का एक घर है.
For those who are faithful, not many maybe, but for them, church is like a home.
और बहुत सारे विश्वास योग्य नहीं, लेकिन कुछ विश्वास योग्य लोग हैं, उनके लिए कलीसिया एक घर के समान है.
So that should be our aim. We should be striving towards that. Each of us, through our own faithfulness, and we seek to see church as my home.
और हमारे विश्वासियों के द्वारा हमारा हर एक यत्न होना चाहिए कि हम कलीसिया को अपना घर बनाए रखें.
Bible. Illustrates that in many ways.
और बाइबल इस प्रकार संगति को बताता है.
One of the simple way it is described is so that everybody can understand, like a human body.
और बहुत ही आसान तरीका है जो बाइबल बताता है, एक मानवीय शरीर.
That is written in Romans chapter 12.
और रोमियो 12 अध्याय में इसे लिखा है.
We are many, but are one body in Christ, and individually members of one another.
रोमियो 12 उसका 4-5 अध्याय. क्योंकि जैसे हमारी एक देह में बहुत से अंग हैं और सब अंगों का एक ही सा काम नहीं है.
सो चर्च इज लाइक हेड ऑफ द चर्च इज क्राइस्ट एंड वी आर ऑल लाइक डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी.
और कलीसिया एक देह के समान है जिसका सिर यीशु मसीह है और हम सारे लोग एक भिन्न भिन्न अंग है.
वेरी इजी टू अंडरस्टैंड.
बहुत आसान है समझने के लिए.
एंड इन सबमिशन टू द हेड एंड एट द सेम टाइम हाउ ईच आर इंटर रिलेटेड इंटर डिपेंडेंट ईच ऑफ द मेंबर्स ऑफ द बॉडी.
और किस प्रकार ये शरीर के सारे अंग शरीर के साथ और उस सिर के साथ कैसे एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं.
सो दैट इज अ गुड पिक्चर हाउ गॉड सीक हाउ डिजायर हाउ वी नीड टू फंक्शन एज अ चर्च एंड इन द ब्रदरली फेलोशिप.
और यही कितना अच्छा एक चित्र है कि परमेश्वर इसी रीति से चाहता है कि हम भाईचारे की संगति में और कलीसिया के रूप में इस प्रकार कार्य करें.
First of all, recognizing our own need for one another.
और सबसे पहले हमारी एक दूसरे के जो एक दूसरे की जो जरूरत है उसको जानना.
Our own dependence on one another.
एक दूसरे के ऊपर हमारी निर्भरता को जानना.
And in submission to Christ, because Christ is the head of the church.
और यीशु के ऊपर हमारी निर्भरता क्योंकि वो हमारा सिर है.
And just like any, if I cut my hand and keep it separate, you can understand it has no life, it is dead.
और जैसे एक हाथ को अगर काट के बाजू में रख दिया जाएगा उसके अंदर कोई जीवन नहीं रहता.
But so long as it remain in my body, it can be used for many useful things.
और जब तक वो हाथ मेरे शरीर में बना रहेगा तब तक वो आगे शरीर के काम में आएगा.
Very simple example, the same way our usefulness is there only so long as we belong part of the body.
और बहुत ही आसानी उदाहरण है उसी प्रकार एक देह के अंदर हमारी उपयोगिता तब तक बनी रहेगी जब तक उस देह के अंग हम बने रहते हैं.
Just like a human body, we don't there cannot be independence beyond without being part of the body. In the same way that we all need to strive how deeply we are dependent on need to be part of the body.
और जैसे शरीर के हर एक अलग अलग अवयव अलग अलग कार्य नहीं कर सकते या दूर होकर कार्य, वैसे ही हमें एक देह के अंदर एक दूसरे के साथ मिलकर कार्य करना है.
And something I want to share, this thought was coming to me, there is a cost for everything.
और एक विचार जो मेरे मन में आ रहा था, हर एक चीज का एक कीमत है.
No good thing come free.
और कोई भी भली अच्छी चीजें है वो मुफ्त में नहीं मिलती.
There is a cost, there is a price for every good thing.
और हर एक अच्छी चीज जो है उसकी कीमत होती है.
And same applies to fellowship also.
और यही एक संगति के साथ भी इसका हम लागू कर सकते
हैं. That is something which I myself learned in my own life.
और ये मैंने अपने खुद के जीवन में सीखा है.
If I need this fellowship, if I value fellowship, I should be willing to pay a price.
अगर मुझे संगति में रहना है उसका मूल्य करना है तो मुझे उसका कीमत चुकाने के लिए तैयार रहना है.
More than anything, I should be willing to die to my own self.
और सबसे बढ़कर मुझे अपने खुद के लिए स्वयं के लिए मरने के लिए तैयार रहना है.
If I seek to elevate my own self, I cannot fellowship with others.
अगर मैं अपने खुद के स्वयं को ऊपर उठाने की कोशिश करूंगा तो मैं औरों के साथ संगति नहीं कर सकूंगा.
That self to my self-centered life to I need to put to death.
और मेरा स्वयं का जो खुदी का जो जीवन है मुझे पूरी तरह से समर्पित करके नीचे रखना है.
Something I learned from the life of Moses.
और मूसा के जीवन से कुछ जो मैं सीखता हूँ.
Moses had a choice.
और मूसा के पास एक चुनाव था.
As we know, when he was raised in the house of Pharaoh in the palace, king's palace.
और जैसे हम सब जानते कि मूसा एक फरौन के महल के अंदर बड़ा हुआ था.
He had a choice to continue there.
और उसके पास एक चुनाव था कि वो राजा के महल में ही आगे बढ़ता.
Nobody would question him. That was his right.
और उसका वो अधिकार था, कोई उसको प्रश्न नहीं पूछता.
Continue to be known as the Pharaoh's daughter's son and enjoy all the benefits of being in the all the protection and wealth and the glory of being in the palace of Pharaoh.
और वो वहीं पर राजा के महल में राजा की बेटी का बेटी कम पुत्र कहला के वहाँ की सारी महिमा वहाँ का धन सब कुछ वहाँ पे वो आनंद उठाता.
But we read in Hebrews 11, Moses took a choice.
लेकिन इब्रानियों 11 अध्याय में हम सुनते हैं कि मूसा ने चुनाव किया.
He had this choice, two options in his hand. One is being continued to be in the Pharaoh's palace, known as Pharaoh's grandson.
और पहले दो चुनाव उसके सामने थे. एक चुनाव ये था कि पारो के महल के अंदर वो बना रहे.
And is written in Hebrews chapter 11, verse 24.
इब्रानियों 11 अध्याय वचन 24 में लिखा है.
He choose rather to suffer affliction with the people of God than to enjoy the passing pleasures of sin.
और विश्वास ही से मूसा ने सयाना होकर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया. इससे पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अधिक उत्तम लगा.
Moses chose to suffer hardship in being with the children of God.
और मूसा ने यहाँ पे चुनाव किया कि उसके परमेश्वर के लोगों के साथ दुख उठाए.
So it was a great choice. It's not an easy choice.
और ये कोई आसान चुनाव नहीं था, लेकिन एक कठिन चुनाव, महान चुनाव उसने किया.
He gave up the comfort of being a part of the king's family, but he chose to suffer affliction.
और राजा के घराने का जो आराम था उसने छोड़कर परमेश्वर के लोगों के साथ दुख उठाने को चुना.
there is something which challenge my own life.
और ये मेरे खुद के जीवन को चुनौती देता है.
If I value fellowship, if I value church, if I value brotherhood,
अगर मैं भाईचारे को, संगति को, कलीसिया को मैं मूल्य समझता हूँ,
I will be more than glad in making some difficult choices.
तो यहाँ पर मैं बहुत कठिन ऐसी चुनाव को पसंद करने के लिए मैं आनंदित होऊंगा.
I will take delight in suffering some inconveniences.
और कोई भी ऐसी आरामदायक चीजें नहीं होंगी, उसको मैं आराम से, मतलब दुख, उसको मैं अच्छी तरह से उठाऊंगा.
There may some inconvenience, some cost I had to pay, but I will be willing. I will not even be aware. I will not even willing. It will be all happen unknowingly sometime.
और शायद उसको करने के लिए मुझे कुछ कीमत को चुकाना पड़ेगा, लेकिन मैं उसे याद तक नहीं करूंगा और बिना जाने हुए मैं उसको करूंगा.
Because I value fellowship, I value church.
क्योंकि मैं कलीसिया को और संगति को मूल्यवान समझता हूं.
Something we have to is a reality, a truth that we to remember in our hearts.
और एक सत्य, एक वास्तविकता है जो हमारे हृदय में हमें याद करना है.
If we need to promote fellowship, if you want to be in God's household, there is a cost, there is a choice.
अगर आप संगति में बने रहना चाहते, परमेश्वर के भवन में बने रहना चाहते, उसके लिए कीमत है.
No one will impose this upon us. It's a personal choice, just like Moses took it. Nobody imposed it on Moses.
और कोई जबरदस्ती आप पर ये नहीं थोपेगा. मूसा पर किसी ने थोपा नहीं था. ये आपका खुद का चुनाव है.
But he chose to suffer inconvenience and suffering along with the people of God.
लेकिन मूसा ने परमेश्वर के लोगों के साथ दुख उठाना पसंद किया.
And in the same words, it's also he esteemed the reproach of Christ greater riches than the treasures of Egypt.
और 26 वचन, उसने मसीह के कारण निंदित होने को मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा.
Sometimes I ask this question, when was the last time I suffered some inconvenience, I suffered some cost for the sake of the fellowship?
और ये मैं अपने आप को प्रश्न पूछता हूँ कि कौन सी ऐसी पिछली बार ऐसी कोई घटना थी कि जहाँ संगति को मूल्य देने के कारण मैंने किसी नुकसान या किसी कीमत को चुकाना मुझे पड़ा हो.
No, we know many Christians, the truth we see around, there are many Christians, it's a matter of convenience, church is a matter of convenience.
और बहुत हमारे आसपास मसीह को देखते हैं कि कलीसिया उनके लिए एक आरामदायक जगह हो जाती है.
When there is nothing else to do, they are free and it is near our house, we go to church.
और जब कुछ भी
करने के लिए really take trouble and traveling long distance.
और कुछ भी करने के लिए नहीं है तो उनके घर के पास में आरामदायक है तो उस कलीसिया में वो जाते हैं.
So our tendency to take the easy way, we're not willing to suffer inconvenience.
और हमारा जो स्वभाव हो जाता है, हम दुख उठाने के लिए तैयार नहीं होते हैं.
But what I'm trying to, if we really seek, understand the value, it will be a joy. It will be a delight in our heart to take some sufferings and inconveniences.
और मेरा कहना यह है कि अगर हम उस संगति का मूल्य जान जाएंगे तो आनंद से उन दुखों को, उन कठिनाइयों को हम सहेंगे.
And in 2 Corinthians chapter 8 verse 5,
दूसरा कुरंतियों 8 अध्याय वचन 5.
We read that it is an expression about a commitment.
और यहाँ पे एक जो समर्पण है उसके बारे में लिखा हुआ है.
And not only as we had hoped, but they first gave themselves to the Lord and then to us by the will of God.
और जैसी हमने आशा की थी वैसी ही नहीं, वरन उन्होंने प्रभु को फिर परमेश्वर की इच्छा से हमको भी अपने आप को दे दिया.
2 Corinthians 11:8-5.
दूसरा कुरंथी
2 Corinthians 8:5, yes.
दूसरा कुरंथी 8 उसका 5.
So he speaks about a twofold commitment.
और यहाँ पे दो प्रकार के जो कमिटमेंट उसके बारे में बात करता
है. First of all, they committed themselves to God.
पहला जो उन्होंने अपने आप को परमेश्वर के प्रति समर्पित किया.
That is a primary thing.
ये प्राथमिक चीज है.
Without any doubt.
और किसी भी संदेह के बिना.
And this says that then to us, then means then to one another.
और उसके बाद वो कहते, उसके बाद परमेश्वर को समर्पित करने के बाद एक दूसरे को समर्पित.
So it is not just a question, okay, I commit my life to Christ. It's not that alone, it is also a commitment to one another.
और केवल इतना ही नहीं कि मैंने परमेश्वर को अपना जीवन समर्पित किया है, लेकिन उसके साथ साथ मैं एक दूसरे के साथ भी अपना समर्पण करता हूँ.
Where is the danger? There is no commitment. We may tend to betray one another.
और खतरा यह होता है कि जब हम एक दूसरे के साथ समर्पित नहीं होते, तब हम एक दूसरे को धोखा देने लगते हैं.
Why Judas betrayed Jesus?
क्यों यहूदा इस्कारियोत ने यीशु मसीह को धोखा दिया?
It was a lack of commitment. He was not committed.
क्योंकि वो समर्पित नहीं था.
And so I often think like this, it is not good to have too much an independent spirit.
और ये अच्छी बात नहीं है कि बहुत ही आत्मनिर्भरता होना, खुद पर निर्भर होने की बात.
I mean, just like the example I went and one of our members try to be separate from the body. What does that mean?
जैसे मैंने उदाहरण दिया कि अगर हमारा हाथ काट कर बाजू में रख दिया जाए तो उसका क्या अर्थ होगा?
So that kind of independence, is it a good thing?
ये इस प्रकार की खुद पर की आत्मनिर्भरता ठीक नहीं है.
My hand trying to be desiring and seeking to be away from my body. He wanted to be independent.
और मेरा हाथ आत्मनिर्भर होना चाहता है, इसलिए वो मुझसे, मेरे देह से अलग होकर अब खुद से जीना चाहता है.
I think any child can understand that principle.
और ये सिद्धांत एक छोटा बच्चा भी समझ पाएगा.
In the same way.
उसी प्रकार.
We all need to be doing everything possible to be part of the body.
हमें हर वो चीज करना है ताकि उसके द्वारा हम मसीह के देह के भाग बन सके.
There is a verse in Proverbs chapter 18 verse 1.
नीति वचन 18:1.
A man who isolates himself seeks his own desire. A man who isolates himself seeks his own desire.
और जो दूसरों से अलग हो जाता है वह अपनी ही इच्छा पूरी करने के लिए ऐसा करता है.
So when we discover that tendency in ourselves, a tendency to isolate ourselves from the body.
और जैसा ऐसा स्वभाव जब हम अपने आप में पाते कि हम देह से अपने आप को दूर करने की कोशिश करते हैं.
We should check why it is happening.
और हमें अपने आप को जांचना है कि ऐसा क्यों हो रहा
है. Why that desire? Why that tendency?
और क्यों ऐसा स्वभाव या इच्छा मेरे अंदर आ रही है?
The answer is given. He seeks his own desire, something for his own.
और उत्तर वहाँ लिखा है, वो अपनी ही इच्छा पूरी करने के लिए ऐसा करता है.
And Jesus said that unless a corn of wheat falls into the earth and dies, it remains alone.
और यीशु मसीह ने यूहन्ना में कहा कि जब तक कि गेहूं का दाना उस भूमि पर गिरकर मरता नहीं, तब तक वो अकेला रहता है.
But if it dies, it bears much fruit.
जब वो मर जाता है, तब वो अधिक फल लाता है.
A corn of wheat, looking very, you know, if you take a grain of say wheat, it looks good.
अब गेहूं का दाना एक एक, एक हाथ में लेकर देखे, वो अच्छा दिखता है.
We can keep in an air conditioned environment, it's good to look at it.
हम एयर कंडीशन में उसको रख सकते हैं.
It will remain like that, maybe some years. I don't know.
और कई सालों तक शायद ऐसा रहेगा और दिखने में अच्छा दिखेगा.
But if it is allowed to fall in the ground and die, its identity is lost. It gave himself up.
और जब उसको हम अनुमति देते हो जमीन पर गिरकर अपने आप को मरे, तो उसकी जो अकेलापन रहने का है वो दूर हो जाता है.
And that grain dies.
और वो जो अनाज का दाना है वो मर जाता है.
It bears much fruit.
उसके बाद वो और अधिक फल लाता है.
Fruitfulness happens only when one dies.
और हम जब मरते हैं तभी हम फल ला पाते हैं.
इन जॉन चैप्टर 1, जॉन चैप्टर 15 वर्स 4, जीसस टोल्ड.
और यूहन्ना 15 के अंदर यीशु मसीह ने कहा,
अबाइड इन मी एंड आई इन यू. As a branch cannot bear fruit of itself unless it abides in the vine, neither can you unless you abide in me.
यूहन्ना उसका 15 अध्याय वचन 4. तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में, जैसे डाली यदि दाखलता में बनी न रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे तुम भी यदि मुझ में बने न रहो तो नहीं फल ला सकते.
So Jesus, in this case, Jesus mentioned about abiding in himself, abiding in Jesus.
और यीशु मसीह कहता है कि यीशु मसीह में बने रहने के बारे में.
Unless a branch of vine abides in the vine, branch cannot bear any fruit.
और जैसे डाली यदि दाखलता में बनी न रहे तो वो फल नहीं ला सकती.
It will dry and burn in independence.
वो सूख जाएगी अपनी आत्मनिर्भरता में और जला दी जाएगी.
So it applies in the same way for each one of us. Unless we are part of the body of Christ, part of the body, we will wither away.
और यही हमारे ऊपर लागू हो जाए, जब तक हम उस शरीर के देह के एक भाग नहीं बन जाते, अगर ऐसा नहीं है तो हम सूख जाएंगे.
It's good we understand this principle early in our life.
और ये बहुत अच्छी बात है कि हम पहले ही हमारे जीवन में शुरुआत में इस सिद्धांत को समझ जाएं.
And value the fellowship, value the church, value the body of Christ.
और तब परमेश्वर के देह, परमेश्वर की कलीसिया और संगति का मूल्य करने लगे.
And seek everything possible to be integrated with the body of Christ.
और ताकि हर एक हम प्रयत्न करें ताकि हम परमेश्वर की देह, यीशु की देह के साथ एक होने के लिए हर कार्य को करें.
It's not a part, that doesn't mean that every Sunday you have to be here.
इसका मतलब ये नहीं कि हर एक रविवार को आपको यहाँ आना ही है.
It all happens silently inside us.
लेकिन ये गुप्त रीति से हमारे भीतर पहले होता है.
We have brother Sujit in our midst coming after about 1 year.
एक साल के बाद सुजीत ब्रदर यहाँ पर हमारे मध्य में आए हैं.
But I still see him as part of the body. I'm seeing after about 1 year, but his heart is in the part of the body. He knows that he is part of the body of Christ.
और एक साल के बाद शायद मैं उन्हें देख रहा हूँ, लेकिन उनका दिल जो है वो संगति में बना है और वो यहाँ पर आज है.
So it's not a question of being physically present here. We are not talking about that.
और हम शारीरिक रीति से यहाँ पर आना इसकी बात नहीं कर रहे हैं.
By all means, we should not basic thing. We should not miss fellowship. We have to be here. We all try to do that.
और हमें हर प्रयत्न करना है, हर रीति से हमें यहाँ पर रहना जरूरी
है. More than that, heart we should value. We should cherish being part of the body of Christ.
लेकिन उससे बढ़कर हमारे हृदय के अंदर उस संगति का मूल्य हमको करना है.
I have seen something which God spoke to me from my verse 1 Corinthians chapter 12:21.
और पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय 21 से परमेश्वर ने मेरे हृदय से बात की.
It says that and the eye cannot say to the hand that I have no need of you.
पहला कुरिन्थी 12 का अध्याय 21 वचन, आंख हाथ से नहीं कह सकता मुझे तेरी आवश्यकता नहीं.
Now can you imagine the eye is talking to the hand saying no go away, get lost, I don't need you.
आप सोच के देखिए कि आंख हाथ से कह रहा है कि मुझे तेरी जरूरत नहीं, तू यहां से निकल जा.
And the head is telling to the feet.
और सिर जो है वो पैर से कह रहा है.
I am at the top, you are the lowest, I don't need you.
और मैं सबसे ऊपर हूँ, तू बहुत नीचे, मुझे तेरी जरूरत नहीं, तू चले जा.
So that illustrates an attitude that can be inside us.
और ये एक स्वभाव को हमारे अंदर प्रदर्शित कर सकता है जो हमारे अंदर हो सकता है.
Thinking can be okay, I am strong, I can be all alone, I don't need others.
हम ये सोच सकते कि मैं बहुत ही मजबूत या बलवान हूँ, मुझे किसी और की जरूरत नहीं है.
That's an area where we can really work and strive to free ourselves from such a deception.
ऐसा एक क्षेत्र है जो हमें कार्य करना है और हर धोखे से हमें बचाए रखना है.
An ungodly independence.
जो ईश्वरीय भक्ति में बात नहीं है और अपने आप की आधारितता खुद पर उससे बचाए रखना है.
Really harm us.
और जो हमें नुकसान पहुंचा सकती
है. We will not know what we are missing.
और हम ये नहीं जानेंगे हम कि क्या खो रहे हैं.
And I think one of the most important thing which hinders fellowship is ourself.
और सबसे पहली जो मुख्य बात है जो संगति को बनाए रखने में जो बाधा रूप बनता है वो है हमारा घमंड.
Our self-life.
हमारा खुद का जीवन.
So long as we are not dealing with our self-life, that will be hindrance for us for fellowship with one another.
और जब तक कि हम खुद के जीवन के साथ व्यवहार अच्छी ठीक से नहीं करते, तब तक हम संगति के लिए एक बाधा बने रहेंगे.
It's interesting. Bible teaches that church it is a mystery.
और जैसे वचन बताता है कि कलीसिया एक रहस्य की बात है.
Some people see church as a building, with a cross on the top.
और कुछ लोग कलीसिया को एक बिल्डिंग इमारत की जैसे देखते हैं जिसके ऊपर एक क्रूस बनाया गया है.
Many people understand church like a building, a structure or an organization.
और लोग समझते हैं कि एक संस्था के समान है, एक स्ट्रक्चर के समान वो है.
But it is a mystery. We only understand a little bit.
और लेकिन कलीसिया एक रहस्य है, बहुत कम लोग उसको समझ पाते हैं.
So, I remember in Psalm 16
और भजन संहिता 16 में इस प्रकार लिखा है.
There's an expression valuing fellowship.
और वहाँ पे जो संगति है उसके उसको मूल्य करने के बारे में लिखा है.
In verse 3
भजन संहिता
16 verse 3
16 अध्याय वचन 3.
As for the saints who are on the earth, they are the excellent ones in whom is all my delight.
पृथ्वी पर जो पवित्र लोग हैं वे ही आदर के योग्य है और उन्हीं से मैं प्रसन्न रहता हूँ.
So Sam is first talking about God.
पहले वो परमेश्वर के बारे में भजनकार लिखता
है. Second he is talking about the saints में brothers and sisters.
यहाँ पे पवित्र लोग जो लिखा है कि मतलब जो धरती के ऊपर भाई और बहन जो है.
His thoughts about brothers and sisters in the fellowship is like they are the excellent ones.
और वहाँ पे वो भाई बहन के उसके में विचार क्या रखता है कि वे ही आदर के योग्य है.
In whom is all my delight.
और उन्हीं में मेरा सारा आनंद है.
So may God really help us to value the fellowship, value the church.
और सच में परमेश्वर हमारी मदद करे कि कलीसिया या संगति का हम मूल्य कर सके.
And make every effort from the depth of our heart to be part of the body of Christ.
और हमारे हृदय के साथ हर एक यत्न करे ताकि हम उस कलीसिया का उस संगति का एक भाग बने रहे.
And with the gratefulness enjoying the benefit and protection that we receive.
और धन्यवाद के साथ हम उस सुरक्षा को हम आनंद उठाए.
I want to share two admonitions that is there in Romans chapter 14.
रोमियो 14 अध्याय में दो प्रोत्साहन की बातें लिखी है.
Romans 14.
रोमियो उसका 14 अध्याय.
Verses 19 and 20.
उसका 19 और 20.
Yeah. Romans 14, 19 and 20.
रोमियो 14 उसका 19 और 20 वचन.
So then we pursue the things which makes for peace and the building up of one another.
इसलिए हम उन बातों में लगे रहे जिनसे मेल मिलाप और एक दूसरे का सुधार होता है.
Pursuing means we are working towards, sir. We are every opportunity we are working towards.
हर एक मौके के साथ, हर एक यत्न के साथ हम उस और काम कर रहे हैं.
To make peace, to pursue peace.
ताकि हम एक दूसरे के साथ मेल मिलाप या शांति बनाए रह सकें.
That is something should happen in the church, in the fellowship.
और ये कलीसिया के अंदर होना जरूरी है.
So when in our relation with one another, in the fellowship, this is what we should seek for, thinking about. I need to pursue to ensure peace in the fellowship.
और एक दूसरे के साथ रिश्ते के अंदर हमें उस संगति को, उस मेल मिलाप को, शांति को बनाए रखने के लिए खोजना है.
Or in other words, I by all that I do and think and involve, I should pursue, I should seek to ensure peace in the fellowship.
और जो कुछ मैं करता हूँ अपने कार्य को इसके अंदर करता हूँ हर यत्न के साथ मुझे देखना है कि मैं मेल मिलाप के साथ उस संगति में बने रहता हूँ.
Second part of building up one another.
और दूसरा भाग जो है एक दूसरे को बनाना.
So when we meet each other in our homes, we visit homes, we talk each other, so all that should contribute to building up one another.
और जब हम एक दूसरे से मिलते, एक दूसरे के घर पे जाते, संगति करते, उससे एक ही चीज होनी चाहिए, हम एक दूसरे को बनाते हैं.
That is why when we meet, we always encourage by all means avoid backbiting and gossiping.
इसलिए हम कहते हैं कि जब कभी आप किसी से मिलते, किसी के घर जाते, किसी की गपशप या किसी के पीठ पीछे बात न करें.
Backbiting and gossiping is like injecting a poison into others' blood.
और ये पीछे किसी की गपशप करना है, किसी के बारे में बुरा कहना, इस प्रकार है कि किसी के और के शरीर के अंदर उस जहर को हम इंजेक्ट करते हैं.
We should make all effort to free our life from backbiting and gossiping.
और हर एक प्रयत्न करना है कि गपशप या किसी के पीठ पीछे बोलने से हमें पीछे हटना है.
Speaking about others negatively when that person is not present.
और जो व्यक्ति वहाँ पर मौजूद नहीं उसके बारे में नकारात्मक बातें बोलना.
So the second verse in verse 20 there's another thing written.
और 20 वचन में और दूसरी बात लिखी है.
Do not tear down the work of God for the sake of food.
वहाँ लिखा है भोजन के लिए परमेश्वर के काम को न बिगाड़.
So I thought and meditated about it.
और मैंने इसके ऊपर मनन किया, सोचा.
इट इज नॉट ईजी टू बिल्ड.
और ये बनाना आसान नहीं होता है.
बट इट ईजी टू पुल डाउन.
लेकिन उसको तोड़ना या खींच कर नीचे गिरा देना बहुत आसान होता है.
हाउस बिल्डिंग इट टेक्स वन ईयर राइट.
और एक घर को बनाना, इमारत को बनाना एक साल कई बार लग जाता है.
bring a bulldozer and demolish everything in a day.
लेकिन एक ही दिन में बुलडोजर से उसको आप तोड़ सकते हैं.
इन द सेम डे वर्ड इज डू नॉट पुल डाउन द वर्क ऑफ गॉड.
और यहाँ पे इस प्रकार लिखा है कि परमेश्वर के कार्य को आप तोड़े नहीं या नीचे न उतारे.
सो वी बाय एक्शन बाय वर्ड आवर इन्वॉल्वमेंट इन अननेसेसरी थिंग्स वी कैन कंट्रीब्यूट टू पुलिंग डाउन द वर्क ऑफ गॉड. व्हाट गॉड हैज वर्कड डेवलप्ड ओवर द इयर्स वी कैन ट्राई टू पुल डाउन.
और इतने सालों से परमेश्वर ने जो कार्य को अब तक बनाया है, हमारे उन जो बातें जरूरी नहीं उस बातों को बोलने से, काम करने से, उन परमेश्वर के कामों को हम तोड़ सकते हैं.
सो आवर लाइफ शुड बी यू नो सच थिंग्स शुड नॉट बी स्पोकन अबाउट एनी ऑफ अस.
और ऐसी बातें हमारे में से किसी के भी बारे में बोली ना जाए.
आवर वर्क एंड एफर्ट शुड बी बिल्डिंग अप नॉट डिमोलिशिंग.
और हमारे सारे काम और प्रयत्न उस बनाने के अंदर होने पाए, तोड़ने के अंदर नहीं.
डिमोलिशिंग द वर्क ऑफ गॉड.
परमेश्वर के कार्य को तोड़ना.
एंड सेकंड थिंग आई वांट टू शेयर इज इन द सेम चैप्टर रोमियो चैप्टर 14 वर्स 13.
और उसी अध्याय के अंदर रोमियो 14 अध्याय वचन 13.
It says that let us not judge one another anymore but rather determine this not to put an obstacle or a stumbling block to a brother's way.
अतः आगे को हम एक दूसरे पर दोष न लगाए पर तुम यह ठान लो कि कोई अपने भाई के सामने ठेस या ठोकर खाने का कारण न रखे.
Jesus spoke very strongly about judging others.
और यीशु ने बहुत ही सामर्थ्य के रूप में बताया कि लोगों का न्याय करने के बारे में.
Judge others, you shall be judged.
लिखा है कि जब आप किसी का न्याय करोगे तो आपका न्याय किया जाएगा.
It will come back on you.
वो आपके ऊपर वापस आएगा.
So it doesn't necessarily speaking external. It can be judging inside us.
ये बाहरी रूप से बोलने के बारे नहीं लेकिन कई बार हमारे हृदय के भीतर से दोष लगाने के बारे में हो सकता है.
For example, somebody is coming late. We can judge them, thinking why this brother is late always like that. It's not our business. We should not enter straight into that area.
और अगर भाई लेट आता है तो हम तुरंत हमारे मन में सोचते, दोष लगाते, न्याय करते कि क्यों ये भाई लेट आया होगा. ये हमारा काम नहीं उसको न्याय करना.
Between them and God.
ये उनके बीच में और परमेश्वर के बीच में है.
There may be a genuine reason we don't know.
और एक अच्छा कारण हो सकता है हम नहीं शायद जानते.
So without knowing, we should never judge anybody before time.
और सारी चीजें जानने के बाद ही हम किसी का न्याय करें या जानने की उसको न्याय करने की कोशिश करें.
Doing judging other, we are taking the level of a judge in the court like God.
और अगर हम बिना जाने चीजें को न्याय कर रहे हैं तो हम परमेश्वर के वो स्थान ले रहे हैं, एक न्यायाधीश की स्थान ले रहे हैं.
That is not a good thing.
और ये अच्छी बात नहीं है.
And the second part of that is.
और दूसरा भाग उसका ये है.
I resolved not to put an obstacle or a stumbling block in a brother's way.
और मैंने यह ठान लिया है कि अपने भाई के सामने ठोकर खाने का कारण न बनूं.
So that's a great decision, a resolution, a decision, a determination.
और ये बहुत ही अच्छा एक चुनाव है, यह चुनाव या एक निर्णय है जो हमें करना है.
That my life, I want to make every effort that I will not be स्टम्बलिंग ब्लॉक और ऑब्स्टेकल फॉर समवन एल्स,
और मेरे जीवन के अंदर किसी भी रीत से मैं किसी और के लिए ठोकर का कारण नहीं बनूंगा.
सो दैट्स अ गुड थिंग वी कैन स्ट्राइव फॉर,
और ये बहुत अच्छी बात है जिसके लिए हम पूरा यत्न कर सकते हैं.
आवर लाइफ शुड बी गॉड वांट्स ए मेंट आवर लाइफ टू बी एन एग्जांपल फॉर अदर्स टू फॉलो.
परमेश्वर चाहता है कि हमारा जीवन औरों के लिए एक उदाहरण बन सके ताकि वो उसका अनुसरण कर सके.
आवर लाइफ एंड कंडक्ट शुड बी एन एग्जांपल फॉर अदर्स टू फॉलो.
हमारा जीवन और आचरण औरों के लिए एक उसका अनुसरण करने के लिए एक उदाहरण हो सके.
वी कैन वर्क इन दैट एरिया दैट आवर लाइफ इज नॉट अ स्टंबलिंग ब्लॉक फॉर समबडी.
और हमें उन जीवन के उन क्षेत्रों के अंदर कार्य करना है ताकि हमारा जीवन औरों के लिए ठोकर का कारण न ठहरे.
आवर लाइफ इज नॉट अ हिंड्रेंस for somebody.
और ताकि औरों के लिए हमारा जीवन कोई बाधा रूप ना बने.
Especially for those who are weak in faith or younger by age.
और खासकर उन लोगों के लिए जो विश्वास में कमजोर है और उम्र में कम है.
So it's a great thing we can work in our life.
और ये बहुत अच्छी बात है जिसके अंदर हम अपने जीवन में काम कर सकते
हैं. Not to be hindrance or a stumbling block to anybody.
ताकि हम औरों के लिए ठेस का कारण या ठोकर का कारण न बने.
So I want to conclude saying this that we should learn to value the good thing God has given us in our life.
और हमें इसके साधारण करना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने जो अच्छी बातें हमें जो दी है उसका मूल्य करना हमें जानना है.
Especially we should learn to be grateful for the fellowship and the brotherhood and the church which God has given.
और खास करके परमेश्वर ने जो हमें संगति और कलीसिया दी है, जो भाईचारे का प्रेम दिया है, उसके लिए हमें उसका मूल्य करना है.
And we should do everything possible within our ability to nurture it and develop it and strengthen it.
और हर प्रयत्न हमें करना है हर रीति से ताकि हम उसको बढ़ा सके, उसको विकास कर सके.
May God bless us.
प्रभु हमें आशीष दे.
एक चीज जो संगति में बाधा लाती है वो है स्वार्थ.
अनदर थिंग व्हिच आई वाज थिंकिंग ऑफ इज व्हेन आई हैव हिपोक्रेसी इन माय लाइफ.
और दूसरी बात है जब कपट जब अंदर रहता है वो भी बाधा लाती है.
सो व्हेन वी रीड इन 1 जॉन दैट वी हैव फेलोशिप विद वन अनदर.
जब पहला योहन्ना में पढ़ते हैं जब हम लोग एक दूसरे के साथ जब हम संगति रखते हैं उस विषय के बारे में.
इन 1 जॉन चैप्टर 1
पहला योहन्ना पहले अध्याय में
the verse which we said now which was the memory verse.
और जो आज का एक याद रखने का एक वचन था.
This is the message we have heard from him.
ये एक संदेश है जो हमने उसे सुना है.
And announced to you.
और ये हमने बताया है.
That God is light.
और परमेश्वर जो है वो ज्योति है.
And in him there is no darkness at
all. और उसके अंदर कोई अंधेरा नहीं है.
And verse 6 says if we have fellowship with him yet walk in darkness we lie and do not practice the truth.
अगर हम उसके साथ संगति रखते हैं और अंधकार में चलते हैं, मतलब हम लोग झूठ बोलते हैं, हम उसके साथ संगति नहीं रखते हैं.
If we walk in the light as he himself is in the light we have fellowship with one another.
अगर हम ज्योति में चलते हैं जैसे वो ज्योति में है तो हम उसके साथ संगति रखते हैं.
We have fellowship with one another.
हम एक दूसरे के साथ संगति रखते हैं.
And the blood of Jesus his son cleanses us from all sin.
और प्रभु यीशु मसीह का जो लहू है वो हमें साफ करता है.
So it is the most important thing that I need is I am walking in the light.
और सबसे एक जरूरत की बात ये है कि मैं ज्योति में चल रहा हूँ.
That means there is nothing for me to hide.
और इसके मतलब ये है कि मेरे लिए कुछ ऐसा बात नहीं है जो मैं छुपा सकता हूँ.
So I am not coming here and pretending to be someone else.
और यहाँ पे ऐसा नहीं कि मैं एक दिखावा करता हूँ कि मैं कुछ हूँ.
That means there is no hidden area in my life which I'm hiding before others.
और मेरे अंदर ऐसा कुछ छिपाने वाली बात नहीं है कि मैं दूसरे से मैं छिपा के मैं चल रहा हूँ.
There is no sin which I have not confessed to God.
और ऐसा कोई पाप नहीं जो मैंने अभी तक अंगीकार नहीं किया है परमेश्वर के सामने.
And that is why in verse 8 says if we say we have no sin we are deceiving ourselves.
और अगर हम लोग ऐसे आठवां वचन में
यदि हम कहे कि हमने कुछ भी पाप नहीं तो अपने आप को धोखा देते हैं.
So that is one thing that if I say I have not sinned.
और एक बात है जब मैं कहता हूँ कि मैंने पाप नहीं किया है.
That will hinder my fellowship.
और ये क्या है मेरा जो संगति के अंदर एक बाधा लाता है, हम धोखा देते हैं.
It can be in my relationship with one another.
और ये हो सकता है कि जो संबंध या संगति एक दूसरे के साथ जब हम रखते हैं.
Maybe I have spoken angrily.
हो सकता है मैं गुस्से के साथ मैंने कुछ कहा हो
और आई हैव स्पोकन समथिंग व्हिच इज नॉट राइट
और मैं ऐसा कुछ बोला हूं कि जो सही नहीं है
बट व्हेन गॉड स्पीक्स टू मी और समवन एल्स ट्राइज टू करेक्ट मी
और जब परमेश्वर दूसरे से जब कुछ बातें करता है मुझे ठीक करने के लिए
आई से दैट नो इट्स नॉट माय फॉल्ट
और मैं कहता हूं कि नहीं ये मेरी गलती नहीं है
देन आई एम नॉट वॉकिंग इन द लाइट
इसका मतलब ये नहीं कि मैं ज्योति में नहीं चल रहा हूं
बट इफ आई कैन कन्फेस माय सिन आई से दैट आई हैव सिन
और अगर मैं अंगीकार करता हूँ मेरे पापों को अंगीकार करता हूँ
देन आई हैव फेलोशिप विद वन अनदर
तब जाकर के मेरा संगति है बढ़ती है एक दूसरे के साथ
इन सेकंड तिमोथी
दूसरा तिमोथी
चैप्टर 3 वर्स 5
उसका 3:5
इट सेज दैट होल्डिंग टू ए फॉर्म ऑफ गॉडलीनेस ऑल्दो दे हैड डिनाइड द पावर
विभक्ति का भेष तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को न मानेंगे
So that is the kind of people where we should not be.
और इस तरीके के एक लोग एक जन हमें नहीं बनना है.
That we have a form of godliness.
और जो वेश जो हम धारण करते हैं एक भक्ति का.
There is a form, there is a pretense of godliness.
एक दिखावा कि हम भक्ति का एक दिखावा करते हैं.
That others should say that I am that person, I am godly person.
और ताकि दूसरे लोग बोले कि मैं एक भक्तिमान एक इंसान हूँ.
And Paul says that we should avoid such people.
और परमेश्वर पौलुस कहता है कि ऐसे लोगों से हमें दूर रहना है.
That means I cannot have fellowship when I am showing a form of godliness.
और मैं जब ऐसा एक दिखावा करता हूँ तो मैं एक संगति नहीं रख सकता हूँ.
And our fellowship is first with God, then with one another.
और हमारे जो संगति है पहला जो है वो परमेश्वर के साथ है फिर हमारे जो संगति एक दूसरे के साथ है.
If I just have fellowship with one another without having fellowship with God,
अगर मैं संगति एक दूसरे के साथ हम रखते हैं और परमेश्वर के साथ हमारा कोई संगति नहीं है.
It is just like any worldly friendship.
और ये जो है एक एक संसारिक तौर पे एक दोस्ती जैसा होगा.
That means I just have friendship with one another.
इसका मतलब मेरा एक दोस्ती का एक भावना है एक उसका एक संबंध होगा.
It becomes a fellowship when there is one brother and there is another brother and both are in connection with God.
और ये संगति एक ऐसा है कि एक एक, एक जो भाई जो है और दूसरा भाई जो है और ये जो दोनों भाई लोग जो परमेश्वर के साथ संगति में रहते हैं वो एक संगति कहलाता है.
So there is first relationship with God is clear.
और पहले जो संगति जो परमेश्वर के साथ है वो साफ है.
If that is clear, then automatically there will be fellowship with one another.
और जब वो साफ है तो वो ऐसे जब वो ठीक है तो एक दूसरे के बीच में जो संगति है वो भी अच्छा रहेगा.
Because when Paul and Silas, we read in Acts 17, I think.
और प्रेरितों के काम में हम लोग 17 में पढ़ते हैं पौलुस और सिलास के बारे में.
They are in a difficult situation.
और वो एकदम एक कठिन परिस्थिति में है.
Acts 17 verse no Acts 16 verse 25.
प्रेरितों का काम 16 का 17.
So at midnight when Paul and Silas were in the prison.
और जब मध्य रात्रि में जब दोनों लोग जब बंदी गृह में थे.
Automatically they started praising God and thanking Him. That is a fellowship there.
और वो बंदी गृह के अंदर वो दोनों लोग मिलकर के परमेश्वर की स्तुति करने लगे उसको धन्यवाद देने लगे.
And the prisoners were hearing about it.
और फिर वहाँ के जो द्वार के ऊपर जो खड़े थे वो लोग ये इस चीजों को देखा.
It was not a organized thing that they planned that when we go to jail we'll go sing songs or something like that.
और ये एक योजना करके ऐसा बात नहीं था कि जब हम जब बंदी गृह में जाएंगे हम इस तरीके से हम लोग गाना गाएंगे या प्रार्थना.
It was a life which they had always praising God.
ये एक अंदर से एक जीवन था उनके अंदर की वो अंदर से आया हुआ एक जीवन था वो लगातार वो परमेश्वर के धन्यवाद और स्तुति करते.
So they didn't have to plan and then come conduct a meeting or something like that.
और उनको कुछ योजना करके आना जरूरत नहीं था कि आकर के योजना करके हम एक मीटिंग या उस तरीके से एक सभा चलाने का.
So if I have fellowship with God.
अगर मेरा जो संगति जो है अगर परमेश्वर के साथ है.
And I'm continually walking with God.
और उसके अनुसार अगर मैं लगातार चलता हूँ.
And if I fall down, immediately I get up.
और जब मैं गिरता हूँ मैं तुरंत जब मैं उठता हूँ.
If I hurt someone, immediately I apologize.
और जब मैं किसी को दुख पहुंचाता हूँ मैं उसके ऊपर मैं क्षमा मांगता
हूँ. And I'm living with a good conscience all the time.
और एक अच्छा एक विवेक के साथ जब मैं जीता हूँ.
Then I meet another brother.
जब मैं एक भाई से मिलता हूँ.
Then I automatically have fellowship.
और तब जाकर के मेरा जो संगति है वो ऐसे ही बन जाता है.
As brother Danny was speaking,
जैसा भाई Danny ने कहा,
it is more important that first thing is I need to have a fellowship with God.
और बहुत ही जरूरी बात है कि मेरा जो संगति है वो परमेश्वर के साथ होना जरूरी है.
If that is missing, then there is no fellowship with each other.
अगर वो चीज छूट जाती है तो फिर एक दूसरे के साथ संगति करना वो कोई कोई मतलब नहीं है.
I was thinking about Jesus.
मैं प्रभु यीशु मसीह के बारे में सोच रहा था.
When Lazarus died,
जब लाजरस का मृत्यु हुआ,
it says Jesus wept.
और वहां पे ऐसा लिखा गया है कि प्रभु यीशु मसीह रोया.
Jesus was not super spiritual.
और प्रभु यीशु मसीह जो है वो एकदम सुपर स्पिरिचुअल नहीं था.
He understood the human that we get sad.
और वो एक 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 मानसिक चीज को वो समझा कि हम लोग उदास भी होते हैं.
He didn't think that we should always rejoice and we should never be sad.
और ये नहीं सोचा कि हम लोग हमेशा आनंद से रहना है और कभी हमें दुख नहीं होना, ऐसा कभी नहीं सोचा.
That also shows that he understands our weakness.
और वो ये भी बताता है कि हमारे जो कमी है वो जानता है.
And it says in one verse that rejoice with those who rejoice and weep with those who weep.
और ऐसा वचन है कि हम उनके साथ आनंद करना है जो आनंद करते हैं और जो शोक मनाते हैं उनके साथ शोक मनाना है.
So when I see someone, when I see a brother rejoicing, I rejoice with him.
और जब मैं एक भाई को जब हम देखते हैं कि वो आनंद करता है, हमको उसके साथ मिलकर के आनंद करना है.
When I see a brother or sister in pain, that pain comes to me.
और जब मैं एक भाई या बहन को मैं देखता हूँ कि वो शोक में है, दुख में है, तो मुझे उस दुख में, उस शोक में मुझे शामिल होना है.
I really want this life where whenever I am a member of a body, I am a part of a body, when there any member is suffering or anything in pain is, I need to get that pain in me.
और जब मैं एक देह का एक भाग हूँ, अगर मेरा कोई एक भाग जो है वो अगर दुख उठाता है तो मुझे उसके साथ उस दुख को सहना है, उसके साथ मिलना है.
And the first thing that comes when I hear of a brother or sister in pain is, Lord, I pray to God for immediately.
और जब मैं एक भाई या बहन का जब दुख का मुझे सुनने में आता है तो सबसे पहला मैं जो है मुझे प्रार्थना करना है परमेश्वर के पास.
इफ आई हैव अ थॉट दैट हाँ इट्स गुड दैट इट हैपेंड देन दैट मींस आई नीड टू वर्क आउट.
और अगर मैं ये सोचता हाँ अच्छा हुआ ऐसा ही होना था तो इसके अच्छा है कि हाँ, मैं उसमें से निकल जाऊं.
दैट शोज द व्हाट वाज इन माय हार्ट हैज कम आउट.
और ये बताता है कि मेरे हृदय के अंदर क्या था वो बाहर आया है.
ऑल्सो इफ आई गेट जेलस.
और जब मेरे अंदर जलन आती है
that some brother is doing better or doing some, well, something that I am not able to do and I get jealous.
और जब एक कोई भाई या बहन मुझसे कुछ अच्छा करता है जो मैं नहीं कर पाता हूँ तो इसका मतलब मेरे अंदर एक जलन सा महसूस होता है.
Do I immediately cry out before Lord, this jealousy is there in me, I want to come out of it?
क्या मैं परमेश्वर से पुकारता हूँ और कहता हूँ कि हे प्रभु मुझको इससे मुझे बाहर आना है.
Lord, I want to love that brother with a true heart, without jealousy.
मुझे उस भाई या बहन से मुझे प्रेम करना है उसी तरीके से जैसे आपने प्रेम किया, बिना कोई कपट का, बिना कोई जलन का.
And that brother or sister doesn't know it. It's hidden in my heart.
और ये वो भाई या बहन नहीं जानते हैं और ये मेरे हृदय के अंदर छिपा हुआ है.
Am I honest about it? And Lord, I don't want this. I want to love.
क्या मैं ये मैं मेरे जीवन के विषय में सचमुच में सच्चाई तरीके से मैं हूँ या नहीं.
वी आर नॉट इन कॉम्पिटिशन विद ईच अदर.
हम एक दूसरे के साथ जो है हम कॉम्पिटिशन नहीं करते हैं.
इन वन एरिया आई विल बी गुड, द अनदर वन विल बी गुड इन सम अदर एरिया.
एक एक जगह में मैं ठीक हो सकता हूँ, दूसरे जगह में दूसरे भाई या बहन ठीक हो सकता
है. सो व्हेन आई सी समवन इज गुड इन सम एरिया आई लीव इट, आई बैक ऑफ एंड आई टेल दैट ब्रदर, tell that person to do that because he is good in that.
और अगर समझो एक जगह में मैं ठीक नहीं हूँ और वो दूसरा भाई अगर ठीक है तो मैं उसके ऊपर छोड़ देता हूँ और वो उसको मैं वो उसके ऊपर मैं सहमत हो जाता
हूँ. Maybe God has prepared some other thing for me that maybe that area I should concentrate on.
और परमेश्वर ने मुझे एक और एक काम दिया है जिसके ऊपर मुझे ध्यान लगाना है.
Also at home there's lot of scope for fellowship.
और घर के अंदर भी बहुत सा ऐसा एक सहभागिता का एक स्कोप है, बात है, विषय है.
वी शुड लीव, एज ब्रदर सेड, वी शुड लीव विदाउट हाइडिंग एनीथिंग.
और हम ऐसे जीना है जैसे कि हमारे अंदर कोई भी ऐसे छिपाने की चीज ना हो, उस तरीके से हमें रहना है.
आई डोंट हैव एनीथिंग टू हाइड विद माय फॉर माय वाइफ अबाउट माय नेचर एंड शी हैज नथिंग टू हाइड, इट्स ऑल ओपन.
और हमारे बीच में ऐसा कुछ छिपाने वाली बात नहीं होना चाहिए कि मैं पति पत्नी के बीच में कि हम एक दूसरे से छिपाएं चीजों को.
Whatever is there is out in the open. It's everything is clear.
और दोनों के बीच में जो चीजें हैं वो एकदम साफ होना है और एकदम क्लियर होना है.
There is no hidden agenda that we try to hide between each other.
और ऐसे कुछ छिपाने वाली बात नहीं होना चाहिए जो हम एक दूसरे से हम छिपाएं.
I really want this life that this will become more and more practical in my own life.
और मैं यही जीवन को चाहता हूँ और आने वाले दिनों में ये जीवन मेरे अंदर और मैं इस जीवन को प्राप्त करूँ.
That I can seek for fellowship first with God and with each at home and outside.
और मैं जो है इस संगति को मैं प्राप्त करूं और घर में और बाहर के लोगों के बीच में.
God's I believe that God's will for me is not just that I individually grow, but as a church we grow in the Lord.
और ऐसा नहीं कि परमेश्वर की इच्छा नहीं कि मैं सिर्फ अपने हिसाब से मैं अपने लिए जीऊं, लेकिन सब मिलकर के कलीसिया होकर के हम एक साथ बढ़ते रहें.
एंड इट इज आई नीड टू गेट अ लॉट ऑफ रेवलेशन फ्रॉम गॉड. लॉर्ड शो मी व्हाट इज दिस चर्च, व्हाट यू डिजायर.
और परमेश्वर से मुझे काफी कुछ चीजों को प्राप्त करना है और पाना है कि परमेश्वर से मांगे कि क्या आपका इच्छा क्या है मेरे जीवन में इस कलीसिया के लिए और मेरे लिए.
इट्स नॉट आई विल नॉट नो मेनी थिंग्स, बट आई नीड टू आस्क गॉड, लॉर्ड what is your desire, what is your purpose for this church. It is not just that I just consider myself, but there is something we have to grow along together with each other.
काफी बातें ऐसे हो सकते हैं जो मेरे समझ में नहीं है, लेकिन मुझे परमेश्वर से मांगने हैं कि आपकी इच्छा क्या है मेरे बारे में, इस कलीसिया में, और मेरा क्या इसके अंदर कार्य मुझे करना है. उस चीज को हमें परमेश्वर से मांगना है और पूछना है.
एंड दैट लाइफ ऑफ डिपेंडेंस, लाइक even though I think I can do it, but I still depend on the other person to do things.
और एक निर्बलता की एक भावना है आत्मा की, अगर मैं कर भी सकता हूँ लेकिन दूसरे के ऊपर भी वो निर्बलता में रहना.
Actually,
वो एक आत्मा की जरूरत है.
When I do that, the fellowship also increases.
और जिस तरीके से अगर मैं उस भावना में बढ़ता हूँ, वो जो संगति है वो बढ़ती रहती है.
There may be a big thing to do, but I distribute the work and when each other, everyone does his work, there's a good fellowship.
और हो सकता है एक बहुत बड़ा काम है वो मैं नहीं करूँ, लेकिन मिल बांट करके सब लोगों को के साथ में अगर करूँ, वो एक अच्छा एक सहभागिता की एक भावना हो सकती है.
And everything is done in the light, as brother said.
और सब कुछ जो है वो ज्योति में ही होगा, जैसा भाई ने कहा.
And when we have fellowship, there will be frictions. I have seen that.
और जब जब ऐसा एक सहभागिता अगर बना रहेगा तो उसके अंदर एक 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 फ्रिक्शन होगा, एक 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 संघर्ष रहेगा.
वी आर नॉट ऑल परफेक्ट, वी ऑल हैव मेनी मेनी थिंग्स डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर.
और हम लोग जो है हम लोग एकदम सिद्ध नहीं है, हम लोग एक दूसरे हम लोग अलग अलग हैं.
So there's a big thing that I need to do is to forgive, constantly forgive.
और एक बहुत बड़ा कार्य करना है कि मुझे क्षमा करते जाना है और हमेशा क्षमा करते जाना है.
Pair with the other person.
और दूसरे के साथ सहयोग में बनते रहना है.
Otherwise it'll always be fighting. But God wants that I bear. That person is maybe trying to grow, so I need to bear with that person.
और ये एक सहयोग में रहना है, उसको सहना है, और ऐसा नहीं कि हमेशा झगड़ते रहना है.
We cannot do it with our own strength. We need to ask for the power of the Holy Spirit.
और ये अपने ताकत में हम नहीं कर सकते हैं, ये परमेश्वर के आत्मा के साथ ही हम कर सकते हैं.
It is because it is something of the inside. Outside I can control myself, but inside only God can do it. The Holy Spirit can only can unite us.
ये कुछ जो बातें हैं ये अंदर की बातें, बाहर से हम चीजों को हम दिखा सकते हैं, कर सकते हैं, लेकिन अंदर से ये चीज करने के जो ये जो है परमेश्वर के आत्मा के द्वारा हो सकता है और परमेश्वर उसकी सहायता कर सकता है.
We need to pray that Lord, you the Holy Spirit, Lord, you make us one.
और यही प्रार्थना करना है कि हे परमेश्वर, हमें एक एकता में बने रहना है.
Make us one at make me one with my wife at home.
और मुझे मुझे घर में मेरे पत्नी के साथ मुझे एक होना है.
Help me to be one with the brothers and sisters in the church.
और कलीसिया में भाई बहनों के साथ मुझे एक होना है.
May God help us.
परमेश्वर हमारी सहायता करें.
Thank for the word of today we received.
और आज का वचन जो हमें मिला है उसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ.
Actually, the fellowship is very much important things as far as my life is concerned.
और मेरे जीवन के संबंधित मैं मानता हूँ कि संगति जो है बहुत ही मुख्य बात है.
I was ex Alliance Church fellowship person.
और मैं एक दूसरी एक जो संप्रदाय या कलीसिया का भाग पहले था.
And in that fellowship, having some kind of traditional methods of
और
fellowship.
और उसमें कुछ रीति रिवाज थे, जो परंपराएं थे उसमें, उस कलीसिया में.
So I have such kind of some kind of tradition and Old Testament life in my own principles and thoughts.
और मेरे सिद्धांतों के अंदर, मेरे विचारों के अंदर जो पुराने नियम के कुछ रीति रिवाज मुझ में पाए जाते थे.
And when God has bring me into this fellowship.
और जब परमेश्वर मुझे इस कलीसिया में इस संगति में लेकर आया,
there was a moment in my life then where I got a lot of time disturbed and God has disciplined me.
और ऐसे बहुत सारे समय मेरे जीवन में थे कि मैं बहुत disturb हो जाता और परमेश्वर को मुझे अनुशासित करना पड़ा.
And I thank God for that this fellowship I have.
और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि ये संगति मुझे मिली.
Actually, as Brother Abu has told that we need to pay some cost for.
जैसे Brother Abu ने बताया कि संगति के लिए हमें कीमत चुकाने के लिए तैयार रहना है.
And it's very much true that we need to pay some kind of a cost.
बहुत ही सच है कि हमें तैयार रहना है कुछ कीमत चुकाने के लिए.
But main important thing is that it is totally our decision.
और दूसरी मुख्य बात है कि ये पूरी तरह से हमारा खुद का निर्णय है.
As like Moses had chose that thing that okay I want to do accept this ill treatment for the Christ I'm ready for that.
और जो मूसा ने पूरी तरह से ये खुद का निर्णय उसका था कि मैं परमेश्वर के खातिर तैयार हूँ कि उस सारे दुखों को और कठिनाइयों को चुनने के लिए.
And this is the personal response questions for each and every one of us that are we ready to choose to suffer for Christ for the sake of fellowship with Christ.
और ये प्रश्न जो हम सबों के लिए आज है कि हम संगति के खातिर परमेश्वर के लिए क्या दुख उठाने के लिए तैयार है.
There is one verse I want to read, 2 Corinthians chapter 10.
एक वचन मैं पढ़ना चाहता हूँ जो दूसरा कुरिन्थियों में है, दूसरा कुरिन्थियों 10 अध्याय.
And here Paul is writing to Corinthians about disciplined life.
और यहाँ पे पॉल उस कुरिन्थियों के विश्वासियों से लिखता है एक अनुशासित जीवन के बारे में.
And in that, the verse 5, he is telling,
वचन 5 में वो कहता है
that as a elder of that church, he is telling them that we are destroying speculation and every lofty thing raised up against the knowledge of God.
और वहां पे वो एक प्राचीन के रूप में कलीसिया को कहता है इसलिए हम कल्पनाओं हर एक ऊंची बात को जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं.
And we are taking every thought captive to the obedience of Christ.
और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं.
So I just want to emphasize on this second verse that being an elder, he is very much focusing on that to take every thought being captive to the obedience of Christ.
और प्राचीन के रूप में यहाँ पे वो जोर देता है कि हर एक भावना, हर एक ऐसे विचार है जो मसीह के आज्ञाकारी हमको बनाना है.
When I read this verse, I told myself, yes, I am the one of the Corinthians who is sitting in that church.
और जब मैं जब इस वचन को पढ़ता हूँ, तो मैं अपने आप को उस करिन्थियों के विश्वास की समान कि मैं उसी के समान उस कलीसिया में बैठा हुआ व्यक्ति हूँ.
And God has looking at me.
और परमेश्वर मेरी ओर देखकर कहता है.
And my life.
मेरे जीवन को देखकर.
Now it is my choice that whether I want to take my every thought captive to the obedience of Christ or set free myself.
और यह भी ये मेरा चुनाव है कि मेरे सारे विचार और मेरी सारी कल्पनाएं हैं उसको खंडन करते हुए परमेश्वर के आज्ञाकारी बनाना है या अपने खुद के लिए जीना है.
So, that is the thing where I repent.
और यहाँ पर है जहाँ पे मुझे मन फिराना है.
And if I repent, if I confess, honestly, God will give me the favor.
और मैं अगर ईमानदारी से अपने पापों को मानता हूँ, मन फिराता हूँ, परमेश्वर मुझे अनुग्रह देगा.
So, main thing is, first of all, Jesus also has been prayed for us that we should be perfected in the unity.
और यीशु मसीह भी हमारे लिए यूहन्ना के अंदर प्रार्थना करता है कि हम एकता के अंदर एक बने रहें.
But if we judge ourselves rightly, there will be no judgment.
अगर हम सही रीति से हमारा खुद का न्याय करें, तो हमारा कोई न्याय न होगा.
So, for personal response from my interview is we should have to be kept our every thought. Under the obedience of the Christ.
और व्यक्तिगत रूप से मेरा ये चुनाव है कि व्यक्ति मेरे सारे विचारों को परमेश्वर के आज्ञाकारी बना के मुझे रखना है.
This will encourage me and also encourage you also if you are applying in your life.
अगर हम इसे अपने जीवन में लागू करते हैं तो हमें ये प्रोत्साहित करेगा.
To being one in a fellowship.
ताकि हम एक संगति के अंदर एक बने रहें.
May God bless us in this man.
प्रभु हमें आशीष दे.
Praise and thank the Lord.
प्रभु की स्तुति और धन्यवाद हो.
I could feel the spirit moving in our midst.
मैं प्रभु की आत्मा हमारे मध्य में मंडरा रही उसे मैं एहसास कर पाता
हूं. And I could also see that you know it is the need for us and for me to understand.
और मैं ये समझ पा रहा हूं कि इस जरूरत को जो हमारे मध्य में है.
The value of fellowship.
जो संगति का मूल्य करना.
Because this morning time also, I was just understanding and I was asking God, like, which is the area where I need to work out and where I could help the fellowship where I could help myself to grow in it.
और जैसे आज सुबह प्रार्थना में परमेश्वर से मांग रहा था, कौन से ऐसे क्षेत्र है जहां पर मैं कलीसिया के लिए मैं कुछ योगदान दे सकूं और मैं बढ़ सकूं.
As I was sitting, I was thinking, you know, example like how a fellowship should be.
और मैं जैसे बैठकर सोच रहा था कि एक संगति कैसी होनी चाहिए.
Everyone have tasted sambar.
हर एक ने एक सांभर को टेस्ट किया है.
सांभर, ओके. इन दैट व्हाई आई एम टेकिंग सांभर, बिकॉज़ देयर इज लॉट्स ऑफ थिंग्स इन्वॉल्वड इनटू इट.
और सांभर के अंदर बहुत सारी चीजें उसके अंदर होती है.
देयर इज लॉट्स ऑफ वेजिटेबल्स व्हिच इज एडेड टू दैट.
बहुत सारी सब्जियां उसके अंदर डाली जाती है.
डिफरेंट वेजिटेबल्स, देयर इज कैरेट एडेड टू इट, देयर इज पोटैटोज, देयर इज ड्रमस्टिक्स, देयर इज एज मच एज यू वांट यू कैन ऐड टू दैट.
और बहुत सारी ऐसी सब्जियां होती है उसमें जोड़ी जाती है.
एंड देन देयर इज यू नो दाल व्हिच इज एडेड टू दैट.
और दाल उसमें लाया जाता है.
एंड देयर इज अगेन यू नो सम इंग्रेडिएंट्स व्हिच इज अगेन एडेड लाइक टर्मरिक एंड सम कोरिएंडर, मींस द मिक्सचर ऑफ सम इंग्रेडिएंट्स व्हिच इज एडेड टू दैट.
और धनिया हल्दी जैसे जो मसाले है उसमें डाले जाते हैं.
देन मोर एंड ओवर वाटर इज देयर.
और पानी डाला जाता है.
And all that put together, then the taste will come when salt is put to it.
और उन सारी चीजों को डालने के बाद उसमें नमक डाला जाता है ताकि उसमें स्वाद आए.
So now let us now all that is put, will that become a sambar?
और फिर उसके साथ वो सारी बातें बनने के बाद क्या वो सांबर बन जाता है?
Will that become sambar?
और क्या वो सांबर बन गया है?
It has to be cooked in fire.
लेकिन उसको वो आग के अंदर उसको बनाना पड़ेगा.
So it has to be cooked in fire, and only putting in fire does not make become that particular dish which is required.
और उसको आग में हमको पकाना पड़ता है, लेकिन पकाने के बाद भी हमको जैसी वो डिश है वैसे नहीं बनती है.
There is a person also who is required to stand there and do that thing properly.
वहाँ पे एक व्यक्ति की जरूरत है जो वहाँ पे ठीक तरीके से उसको देख पाए.
Fire is involved.
वहाँ पे आग है उसके अंदर.
इंग्रेडिएंट्स एंड अदर थिंग्स आर देयर.
और सारी चीजें जो हमने सब्जी या सारे मसाले उसमें डाले.
अ पर्सन इज देयर हु प्लान्स इट.
लेकिन एक व्यक्ति भी है जो उसकी योजना करता है, आयोजन करता है.
दैट इज जीसस.
और वो यीशु मसीह है.
ही नोज व्हेन टू पुट व्हाट.
और वो यीशु मसीह, वो व्यक्ति जानता है कि किस घड़ी पर कौन सी चीज अंदर डालनी है.
देन द होली स्पिरिट इज द फायर व्हिच यू नो हेल्प्स things to cook and get things ready.
और पवित्र आत्मा एक आग के रूप में वो पकाने के लिए उन सारी चीजों को तैयार करने में मदद करता है.
And then is the vegetable which releases the taste. That is the fellowship. That is we add that. We are in the form of dal.
और वो दाल के रूप में, सब्जी के रूप में जब उसमें पकाया जाता है तो अपने स्वाद को वो छोड़ता है.
Some of us may be tough like chilies and you know can say maybe pungent, you know, giving little that sort of taste.
और कुछ लोग शायद मिर्ची के समान कड़वे होंगे, वो शायद इस प्रकार के वो उसमें होंगे.
एंड सम ऑफ अस कुड बी लिटिल बिट स्वीट आल्सो.
और कुछ लोग बहुत ही मीठे होंगे.
आफ्टर कुकिंग यू नो वी कम लाइक पोटैटो एड्स एंड द कैरेट एड्स लिटिल स्वीटनेस यू नो.
और गाजर और जो पोटैटो जो होता है उसके अंदर जो मिठास को लेकर आता है.
सो दिस ऑल थिंग्स इन्वॉल्व एंड यू नो द पर्सन हु इज देयर ही डज इट वेरी वेल एंड ही नोज हाउ टू मेक इट.
और जो व्यक्ति वहां पर वो बहुत अच्छी तरह से करता है, वो जानता है कि उसको किस तरह से इस बात को करना है.
दैट्स व्हाट आई सी हाउ अ फेलोशिप शुड बी देयर एंड वी कैन नॉट रन आउट ऑफ ईच अदर.
और हम उसी प्रकार की संगति को देखते हैं और वहां हम एक दूसरे से भाग नहीं सकते.
द ड्रमस्टिक विल नॉट जंप आउट ऑफ द डिश सेइंग दैट आई डोंट वांट टू बी
इनसाइड. और ड्रमस्टिक जो होगा वो वहां से बाहर नहीं निकलेगा कि मैं इसमें नहीं रहना चाहता हूं.
एंड द कैरेट विल से नो आई कैन नॉट बी एडेड टू इट, आई कैन नॉट जेल इनटू इट, लेट मी जस्ट जंप ऑफ.
और गाजर ये नहीं कह सकता कि मुझे इसमें नहीं जलना है, मैं बाहर निकल जाऊंगा.
So all is put under pressure.
और वहां पर एक दबाव के अंदर उन सबको डाला जाता है.
In the cooker.
कुकर के अंदर.
The Holy Spirit then again gives the fire and then you know it tries to gels and we have to gel into it.
और वहाँ पर पवित्र आत्मा की आग के द्वारा उसको वो जलाता है.
That's what we read in John chapter in the book of John.
और यूहन्ना में वही 15 अध्याय में हम पढ़ते हैं.
That we need to be grafted.
और जहाँ हम एक दूसरे के साथ बढ़ते हैं.
And we don't get into that and when we are not grafted and we don't have at all a role then it says you're of no point.
और अगर हम एक दूसरे के साथ एक जुड़ते नहीं है, हमारा कोई उत्तरदायित्व नहीं होता है, तो उसमें कोई पॉइंट नहीं है.
And again, you know, it's the Spirit who gives us that sort of understanding where we come together and when we become one in Spirit.
और वो पवित्र आत्मा है जिसके द्वारा हम एक दूसरे के साथ आते, आत्मा में एक बन पाते हैं.
As again, it was reminded that we have to be connected and understand the plan what God has got for me.
और हमें जैसे याद दिलाया गया कि हमें वो समझना है परमेश्वर की योजना जो हमारे प्रति वो रखता है।
Because everyone of us have got our own role and there is something which all have to add in।
और हमारा हरेक का एक कार्य संगति के अंदर है, हम उसके अंदर जुड़ सकते हैं।
And that all the mixture you know gets that taste and that aroma that flavor and where we really can say yes what a sweet fellowship।
और वहाँ पर उन सारे जब एक साथ में जुड़ जाते हैं वहाँ पे एक स्वाद होता है, सुगंध होता है, उसके साथ हम कह सकते हैं कि ये बहुत अच्छी एक ये संगति है।
I really pray that I want to be like that and I want to grow that way and I want to mingle that way and have that sort of fellowship।
और मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि मैं इस प्रकार बढ़ना चाहता हूँ, इस प्रकार जुड़ना चाहता हूँ, ये संगति को मैं चाहता हूँ।
And asking God's grace always।
और हमेशा परमेश्वर का अनुग्रह को मांगते हुए।
To undergo everything, you know, to bear, just brother said, no, that we need to bear one another also।
और जैसे भाई ने जैसे कहा कि हमको एक दूसरे को सहना है।
May the Lord lead us and bless us।
प्रभु हमारी अगुवाई करे, हमें आशीष दे।